रोज गाते थे, बहुत पहले ही याद किए थे क्योंकि हमको बहुत बढ़िया लगता था इसमें।
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभु पादा जय प्रभु पादा प्रभु पादा जय प्रभु पादा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय सुभद्रा, जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, राधा माधव भगवान की
जय।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव महाराज की, गौरनिताई की जय। जय श्री राधे श्या। बलदेव जी, श्री जगन्नाथ जी, श्री सुभद्रा महारानी एवं गौरनिताय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज के चरणों में सतसह सादर विनत दंडवत करते हुए आप समस्त वैष्णवों के चरणों में नतमस्तक होते हुए यथकिंचित भगवान के विषय में चर्चा करने हेतु यत्न करने का प्रयास करेंगे, आप सब कृपा करेंगे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष्यासुन पाश्चात्य देशतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधागोविंद गोस्वामी नामिने। नमस्ते प्रभुपादय देवं गौरवाणी प्रचारिणे। दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरि प्रणमामि हरि प्रणमामि हरि प्रिये नमो महाबदन्याय कृष्ण चैतन्य नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरते से नमः वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ नमो भगवते वासुदेवाय दिव्य अलौकिक अचिन अतर्क अकाट अपौरुषीय श्रीमद्भागवत भगवान की चर्चा चल रही है। उसमें भी श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के अष्टम स्कंद से परम भागवत भक्त चक्र चूड़ामणि पांडव नंदन महाराज युधिष्ठिर का उद्गार चल रहा है। मुख्य वक्ता श्री सुत गोस्वामी हैं और श्रोता सौनक आदि ऋषिगण हैं। सौनक आदि ऋषियों से श्री सुत गोस्वामी जी प्रस्तुत कर रहे हैं। कल प्रभु जी सुना रहे थे सुंदर श्रुति शुद्ध सेवक प्रभु सुना रहे थे, बड़ा सुंदर सुनाए। उसी के आगे आज एक श्लोक लेते हैं। बाल द्विज सुहृन् मित्र पितृ भ्रातृ गुरु द्रुहा न मे स्यान्निरयान् मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः बाल द्विज सुहृन् मित्र पितृ भ्रातृ गुरु द्रुहा न मे स्यान्निरयान् मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतैः बाल द्विज सुहृन् मित्र पितृ भ्रातृ गुरु द्रुहा न मे स्यान्निरयान् मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतैः। निरयान मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतैः बाल द्विज सुहृन् मित्र पितृ भ्रातृ गुरु द्रुहः न मे स्यान्निरयान् मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतैः सुहृन् मित्र पितृ भ्रातृ गुरु द्रुहः वर्षायुतायुतैः मित्र पितृ भ्रातृ गुरु द्रुहः न मे स्यान्निरयान् मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतैः काला देव जस हरिन मित्रा पितृ भ्रातृ गुरु द्रुहा न मे श्याम निरयान मोक्षो यपि वर्षायुतायुतै तेजस हृन्मित्र भ्रातृ गुरु द्रुहा न मे श्याम निरयान मोक्षो यपि वर्षायुतायुतै बाला तेजस हृन्मित्र पितृ भ्रातृ गुरु द्रुहा न मे श्याम निरयान मोक्षो यपि वर्षायुतायुतै बाला द्विजस हृन्मित्र पितृ भ्रातृ गुरु द्रुहा न मे श्याम निरयान मोक्षो यपि वर्षायुतायुतै बाला द्विजस हृन्मित्र पितृ भ्रातृ गुरु द्रुहा न मे श्याम निरयान मोक्षो यपि वर्षायुतायुतै और कोई बाला द्विजस हृन्मित्र न मे श्याम निरयान मोक्षो यपि वर्षायुतायुतै बाला द्विजस हृन्मित्र पितृ भ्रातृ गुरु द्रुहा नमे श्याम निरयान मोक्षो वर्षायुतायुतै बाला द्विजस हृन्मित्र पितृ भ्रातृ गुरु द्रुहा नमे श्याम निरयान मोक्षो यपि वर्षायुतायुतै बाला दड़के द्विजा दो बार जन्म लेने वाले सुहृत शुभ चिंतक मित्रा मित्र पित्री चाचा ताऊ भ्रात्री भाई गुरु शिक्षक द्रुहा मारने वाला ना कभी नहीं मैं मेरा स्यात होगा निरयात नरक से मोक्षः मुक्ति ही निश्चय ही आपि यद्यपि वर्षा साल आयुता लाखों युतै जुड़े जाने पर अनुवाद भी सब लोग बोलिए हमारे साथ मैंने अनेक बालकों ब्राह्मणों शुभचिंतकों मित्रों चाचा ताऊओं शिक्षकों तथा भाइयों का वध किया है भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं लेकिन मैं इन सारे पापों की मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। जब भी युद्ध होता है तब अनेक निर्दोष प्राणी यथा बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां, जिनका वध पाप पूर्ण माना जाता है, मारे जाते हैं। ये सब निर्दोष प्राणी हैं और समस्त परिस्थितियों में इनका वध शास्त्रों द्वारा वर्जित है। महाराज युधिष्ठिर को इस सामूहिक संहार का पता था। इसी प्रकार दोनों ही दलों में मित्र, चाचा, ताऊ तथा शिक्षक थे और वे सभी मारे गए। उनके लिए ऐसे नरसंहार का सोचना ही भयावह लगता था। अतएव लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहने का विचार कर रहे थे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अब तो आगे कहने की कुछ जरूरत नहीं है, दादा गुरु जी ने सब कुछ तो लिख ही दिया है। क्या अभी कुछ बाकी रह गया है? फिर भी थोड़ा पीछे चलते हैं। महाराज युधिष्ठिर शोक क्यों करने लगे? क्योंकि युद्ध तो हुआ है धर्म युद्ध, और धर्म युद्ध का मतलब ही होता है कि धर्माय युद्ध इति धर्म युद्ध, अथवा धर्मे युद्ध इति धर्म युद्ध। धर्माय युद्ध, धर्मात युद्ध, फिर भी महाराज क्यों खेद कर रहे हैं? यह विचारणीय पॉइंट है। और वो भी अपने से युद्ध नहीं किए हैं, धर्म के लिए किए हैं। और धर्म के जो प्रेरक हैं, धर्म के मूलभूत उत्स हैं, धर्म के जो कारण हैं, धर्म के जो प्रतिपादक हैं, धर्म के जो निर्णायक हैं, साक्षात प्राप्त पर ब्रह्म परमात्मा नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण ही कहे। फिर भी महाराज शोक कर रहे हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। समस्त नरसंहार के बाद अर्थात 18 अक्षौणी सेनाओं के पश्चात, वध के पश्चात, दुर्योधन आदि का समूल विनाश हो जाने के पश्चात राजगद्दी पर बैठ गए, चक्रवर्ती सम्राट घोषित हो गए। इसके बाद उनको कृत करना हुआ, जिसको लोक में कहते हैं पिंड दान करना। पितरों को पिंड दान करने के लिए गया में जाते हैं, बिहार में जाते हैं, इधर से भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? पूरे विश्व में एक बिहार में ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ सभी लोग जाते हैं, तो उसको कहते हैं पिंड दान। पितरों को वहाँ देने से पितर बड़ी शांति की अनुभूति करते हैं। और मरने के बाद में ऐसा किया जाता है, जो अपने ज्ञाति कुटुम्ब संबंधी जन हैं वे सब करते हैं। यहाँ उसी तरह धौम आदि आचार्यों ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारे वंश में और तुम्हारे संबंध में इष्ट मित्र दोस्त बहुत सारे लोग आए और युद्ध हुआ, मारे गए। इन सब के लिए कृत भी करना होता है। यद्यपि महाराज सब कुछ जान रहे हैं, फिर भी गुरुजनों का कर्तव्य है कि प्रेरित करें। तो उन्होंने ऐसा किया, जो शेष बच गए थे उनके कुल में उन सबको लेकर, अथते संपरेतानम स्वानम उदकमिच्छतम दातुम सकृष्णा गंगायाम पुरस्कृत्य ययुस्त्रिया। संपरेत लोगों को इच्छा होती है कि हमें पिंड प्रदान हो, तो ऐसे लोगों के लिए पिंड दान देने की इच्छा से द्रौपदी जी सहित गंधारी आदि सबको लेकर, कुंती जी, द्रौपदी जी, गंधारी जी, महाराज धृतराष्ट्र आदि सबको लेकर वे गंगा तट पर गए और सबको नाम ले लेकर पिंड दान करने लगे। क्योंकि नाम लेकर और गोत्र लेकर ही पिंड देने का महत्व है, वह प्राप्त होता है कि हम किसके नाम से दे रहे हैं, और वह दिवंगत आत्मा स्वीकार करता है। ऐसा उन्होंने किया। सब लोग दे रहे थे तो उस समय माता कुंती कहे कि बेटा कर्ण के लिए भी तुम दान दे दो। उन्होंने कहा कि क्यों? एक कर्ण भी बहुत छिपा रहे थे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर जब पूछने लगे तो बतला दी कि कर्ण भी तुम्हारा भाई था। इतना सुनकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और महान विषाद खेद हुआ। कर्ण हमारा भाई था, अब तक आप छिपा कर रखी थी, जिसके चलते आज इतना भारी नरसंहार हुआ। अगर यह बात मैं जान गया होता तो युद्ध ही नहीं किया होता, हम नहीं राजा होते, वो राजा होते। बहुत भारी विशाल उनको खेद हुआ और कहे कि माँ तुम इतनी भारी कपट की, इतनी भारी गोपनीयता रखी हमसे। उनको क्रोध आया और साप दे दिए कि जितनी नारी समुदाय को कि मैं साप देता हूं कि उनके हृदय में कोई गोपनीय बात रह ही नहीं सकती है। यदि वह साप पहले दे दिए होते तो नरसंहार नहीं हुआ होता। फिर उन्होंने उनके नाम पर भी दिया। इसके बाद बहुत काल तक भगवान वहां रहे। इसके पश्चात भगवान जाने लगे। जब जाने लगे तो अश्वत्थामा उसी समय पांडवों को बाण मारा और गर्भस्थ शिशु महाराज परीक्षित पर भी मारा। उत्तरा जी के जो गर्भ था उस पर भी बाण मारा। क्यों? कथा थोड़ा सा समराइज करके सुनना चाहिए कि मरते समय साप दिया था दुर्योधन, पांच पांडवों के जो सोए हुए पुत्रों के सिर काट कर ले गया था, तो इस निमित्त से ले गया था कि आप खुश हो जाएंगे, अर्थात दुर्योधन खुश हो जाएगा, हमारा स्वामी खुश हो जाएगा। कहा कि पांडवों का सिर है तो उनको विश्वास नहीं हुआ, सिर को लिया और दबा दबा के देखने लगा तो सब टमाटर जैसे फूट गए। भीमसेन का भी सिर जब फूट गया तो वो कहा कि पांडवों का सिर नहीं है, क्योंकि भीमसेन का सिर तो गदा मारने पर भी नहीं फूटने वाला है और ये हाथ से दबाने पर फूट गया। इसका मतलब कि पांडवों का सिर नहीं, पांडव पुत्रों का सिर है। उसको बड़ा खेद हुआ और करे मूर्ख, तुमने हमारे वंश का समूल नाश कर दिया, इसलिए मैं साफ देता हूं कि तुम्हारे वंश भी नहीं रहेंगे। अश्वत्थामा के भी वंश में कोई नहीं, वो चिरंजीवी है, आज भी है, लेकिन वंश में कोई नहीं। तो इस बात से वो बड़ा दुखी था कि जिसके लिए चोरी किया वही कहे चोरवा, जिसके लिए मैं सब कुछ किया और वह व्यक्ति मुझको ऐसा साफ दिया कि हमारे कुल परंपरा में कोई हो ही नहीं सकता है, तब इसके परंपरा में क्यों रहेगा। उसने पांच बाण निकाला, पांडवों के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया और एक
सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का जो तेज था उत्तरा के गर्भ उस पर चला दिया। तो पांच पांडवों को तो भगवान बचा लिए रथ पर बैठे बैठे ही विदाई के समय, लेकिन उसी समय भय से विह्वल होकर उत्तरा जी पाही पाही महाजोगिन देव देव जगत पते कहती हुई उनके शरणों में आ गई और कही कि हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही अभय हैं, यहाँ सब दूसरे को मारने वाले हैं किंतु आप अभय पद हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए, हमारे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कीजिए। तो उन्होंने अपना योगी स्वरूप बनाकर भगवान उनके गर्भ में प्रवेश किए और बालक गर्भस्थ शिशु परीक्षित को बचा लिए, जबकि कि वो मर चुके थे, ऐसा नहीं कि वो जीवित थे, मर चुके थे। पुनः इसे न जीवित, आगे स्वयं महाराज परीक्षित कहेंगे, जब बोलेंगे 12वें अध्याय में तो कहेंगे कि पुनः इसे न जीवित, पुनः भगवान के द्वारा इसके द्वारा हम जीवित कर दिए गए, तो उनकी रक्षा कर लिए। क्या भगवान प्रार्थना करने पर रक्षा किए? पहले नहीं कर सकते थे, पहले भी कर सकते थे, लेकिन यह जगत को दिखाना चाहते थे कि ब्रह्मास्त्र से वध हो जाने के बाद में भी भगवान जी ला सकते हैं। भगवान अपनी भगवत्ता को कायम रखे कि संसार वाले जो करना चाहे कर लो, लेकिन मैं जो करूंगा वही अंतिम परिणाम होगा। भगवान ने जीवित कर दिया, प्राण हो गया। इसके बाद इस चीज को कुंती महारानी जब देखी तो वो भी लगी स्तुति करने। इतने दिनों तक तो चुपचाप थी, लेकिन शायद महाराज युधिष्ठिर का साप काम कर गया, क्योंकि महारानी कुंती तो भगवान की बुआ है ना, वो बाल काल से ही देखी थी ना कृष्ण को, लेकिन कभी भगवान तो नहीं कही, अपना भतीजा ही मानती रही। लेकिन टीकाकार लोग कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं, वक्ता लोग कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि शायद महाराज युधिष्ठिर के साथ वहाँ काम किया और वो भी भगवत तत्व का निरूपण करने लगे, जो इतने दिनों से छिपा के रखे थे कि कृष्ण भगवान हैं कि नहीं है, ये नहीं बोल रही थी, वो भी प्रकट करने लगी। वो भी कहते हैं नमः शिव पुरुषम त्वादम प्रकृते है परे, अनेक प्रकृति से जो परे हैं, नमः से त्वादम ईश्वरम प्रकृते है परम पुरुषम, हम आप परम पुरुष को नमस्कार करते हैं। वो कौन कैसे हैं? तो कह रहे हैं प्रकृति से परे हैं, ईश्वर हैं, आदि हैं, पुरुष हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। व्याख्या तो बहुत है, हमको व्याख्या नहीं करनी है, आगे चलना है। तो इस प्रकार उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, नमस्य पुरुषम त्वादम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानम अंतर बहिर्वस्थितम, इस प्रकार उन्होंने नमस्कार किया। तो मान ले भगवान पूछेंगे, बुआ जी आज हमें क्यों नमस्कार कर रही हो, तुम तो बचपन से ही मुझे देख रही थी और आज मुझे क्यों नमस्कार कर रही हो? तो कहती हैं कि मैं तुमको नहीं प्रणाम कर रही हूँ, मैं त्वाम ईश्वरम आद्यम परम पुरुषम प्रकृते ईश्वरम नमस्य, जो परम पुरुष हैं, ईश्वर हैं, आदि हैं, प्रकृति के भी नियामक हैं, उस परम पुरुष को हम नमस्कार करते हैं। अर्थात तुम साधारण पुरुष नहीं हो, अगर मान ले उस परम पुरुष के कर रही हैं तो इसका मतलब कोई दूसरा परम पुरुष है तब ना, लेकिन यहाँ त्वाम पुरुषम, आप परम पुरुष हैं, दूसरा कोई नहीं है, आप ही हैं। त्वाम का अर्थ केवल तुम ही नहीं होता है, तुम माने आप भी होता है, संस्कृत में कभी कभी ऐसा भी अर्थ किया जाता है। तो त्वाम परम पुरुषम
ईश्वरम आद्यम प्रकृते है अहम नमस्ते, मैं नमस्कार कर रहा हूँ। आप तीनों गुणों से परे हैं, प्रकृति से परे हैं, और बाहर और भीतर समस्त जीवों के हृदय में रहते हैं, अलक्ष्य रहते हैं, उसी आप परम पुरुष को हम नमस्कार करते हैं। ऐसा उन्होंने नमस्कार किया। अब भगवान पूरा उनके प्रार्थना को सुन लिए। इसके बाद श्री कुंती महारानी कहती हैं कि हमारा मन इन पांडवों में और इन जदुवंशियों में न लगे। मान ले भगवान कहे कि जदुवंशियों में न लगे, वृषिवंशियों में न लगे, तो हम भी तो उसी में आए हैं, तो क्या हमसे भी विरक्ति हो गई क्या बुआ जी? कि नहीं नहीं हमारी आसक्ति केवल आप में हो और किसी में नहीं। अंतिम उनकी प्रार्थना का यह सार है। इसके बाद में श्री महाराज उनको प्रेम से प्रेमणा राज्ञ निवारित, राजा ने बड़े प्रेम से कहे, महाराज युधिष्ठिर प्रेम से कहे और कहे कि आप चलिए। और जब भगवान को प्रेम से बुला लिए, भगवान आ भी गए, द्वारिका जा रहे थे, उपतस्थे द्वारिकायाम, द्वारिकाम द्वारिकापुरी जाने के लिए रथ पर बैठ गए हैं, तैयार हो गए हैं, सब कुछ हो गया। अब महाराज युधिष्ठिर के कहने से लौट गए। इसके बाद में एक दिन बहुत भारी उनको शोक हुआ, सब कुछ करने के पश्चात। आह राजा धर्म सुतः चिंतयन सुहृदाम बधम, प्राकृते नात्मना विप्रह स्नेह मोह वशम गतः, अहो मे पश्यता ज्ञानम हृदय रूढ़म दुरात्मनः, पारक्यस्यैव देहस्य बहव्यो मे क्षौहिणीर्हतः। श्री सुत गोस्वामी जी कहते हैं, हे सौनक आदि ऋषियों, महाराज युधिष्ठिर एक दिन बैठे बैठे सोचने लगे, ओहो मैंने तो बड़ा भारी अनर्थ कर डाला, मेरे अज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मेरे अज्ञान को तो जरा देखिए, पश्यता देखिए कैसा अज्ञान है। तो कह रहे हैं कि हृदय रूढ़म दुरात्मनः में अज्ञानम पश्य, मेरे हृदय में कितना भारी अज्ञान भरा हुआ है और मैं कितना भारी अज्ञानी हूँ, ओहो इसका कोई हिसाब नहीं है। पारकस्य एव देहस्य बहव्यो में अक्षौणी होता है, मैं जो दूसरे के लिए शरीर है उसके लिए मैंने बध किया, मैंने यह अच्छा नहीं किया, और एक दो लोगों के नहीं अक्षौहिणी हाता है। अक्षौहिणी का कल अर्थ सुन रहे थे ना, कि जिसमें 21,870 रथ पर चलने वाले होते हैं और 21,870 हाथियों पर चलने वाले सैनिक होते हैं, 109,650 पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं और 65,600 घोड़ा पर चढ़कर चलने वाले सैनिक होते हैं। इतने संख्या को जोड़ के तब एक अक्षौहिणी बनता है, और ऐसे ऐसे 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई थी। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि बहव्यो में अक्षौहिणी रहता है, मेरे अज्ञान के द्वारा मेरे पद पोजीशन के निरुपता के कारण इतना भारी नरसंहार हो गया। इसलिए वे खेद कर रहे हैं, बड़े लोग जो होते हैं खेद करते हैं। कल प्रभु जी इसकी व्याख्या कर चुके हैं। बाल द्विज सुहे मित्र पितृ भ्रातृ गुरु दुह न मे श्यान मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतै। अब हम आ गए अपने श्लोक पर, तब तक समय भी हो ही चल गया है। कह रहे बाल द्विज सुहृन मित्र पितृ भ्रातृ गुरु दुह। शास्त्रों में जिनका निषेध किया गया है कि किनको किनको नहीं मारना चाहिए, किनको किनको नहीं मारना चाहिए, तो कह रहे हैं कि बालकों को। पहला शब्द दिए बाल, बाल माने जो बालक हैं, 1 से 5 वर्ष तक के बालक को कहते हैं या कुमार कहते हैं, अथवा अज्ञानी व्यक्ति को बालक कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। तो बालक को नहीं मारना चाहिए, लेकिन हमने बालकों का वध करवाया, हमने बालकों का वध करवाया। कौन कौन? दुर्योधन के भी बहुत बालक मारे गए थे, बड़ा तेजस्वी था, उसका नाम था लक्ष्मण। अर्जुन जी का पुत्र मारा गया था जिसका नाम था अभिमन्यु, बड़ा तेजस्वी था, केवल 1 पॉइंट कम था, नहीं तो अर्जुन जैसा धनुर्धर था, केवल 7वां फाटक तोड़ना नहीं जानता था। अगर यह बतला दिए होते भगवान तो यह युद्ध का श्रेय अभिमन्यु को मिलता, न भगवान को न अर्जुन को, वो इतना पराक्रमी वीर था। तो ऐसे बालक मारे गए, इसलिए यहां बालक कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि द्विज, द्विज मारे गए हैं, ऐसे बालकों के हत्या करने के शास्त्र निषेध करता है, लेकिन वो बालक मारे गए। अब द्विज आया, द्विज को कहा गया है कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को। यद्यपि यहाँ शास्त्र के दृष्टि से 3 लोगों को ब्राह्मण द्विज कहा गया है, जिनका 2 बार जन्म होता है उनको ब्राह्मण द्विज कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, जिनका संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, उनको द्विज कहते हैं। तो क्या उन्हीं द्विज की यहाँ बात कही जा रही है? तो नहीं, यहाँ जिस द्विज की बात कही जा रही है जो जन्म से है, ब्राह्मणों के किसी भी अवस्था में वध नहीं करने का शास्त्र निषेध देता है, लेकिन ब्राह्मण भी मारे गए, ऐसा नहीं कि नहीं मारे गए, द्विज मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, जिनसे हम विद्या सीखे, जिनके छत्र छाया में रहकर हम पुष्पित पल्लवित उत्कर्ष को प्राप्त किए, उनका वध हुआ, उसका कारण मैं हूं। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन वध हुआ है, इसका भागी मैं हूं। और सुहिर अथवा द्विज में और भी बड़े लोग आ सकते हैं, लेकिन यहां द्रोणाचार्य से ही विप्र का द्विज का बोध कराता है। फिर कहते हैं कि सुहृदों का बोध हुआ, सुहृद में बहुत सारे सुहृद थे, सुहृद में तो सच कहिए भीष्म पितामह भी आएंगे, द्रोणाचार्य भी आएंगे, ये भी सुहृद के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि हृदय से ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि पांडवों के साथ युद्ध करना पड़े, और कभी भी उनका अमंगल नहीं चाहे, सदैव उनका हित ही चाहे, और युद्ध भले उधर से किए लेकिन आशीर्वाद इन्हीं को देते रहे कि विजयी भव, इसलिए ये भी सुहृद में ही आएंगे। किंतु सुहृद का थोड़ा और वर्गीकरण करते हैं, सुहृद में जैसे मामा शल्य हुए, देहात्म संबंध से सुहृद हैं, वे आ रहे थे उन्हीं की तरफ से युद्ध करने के लिए, लेकिन वो चाटुकारता से अपने रेंज में फंसा कर सेवा स्वागत करके उनको अपने पक्ष में कर लिया, वाग्दान दे दिए। पहले के लोग ऐसे होते थे कि वाग्दान दे देने के बाद में फिर बदलते नहीं थे। तो ऐसे सुहृदों का वध हुआ, और महाराज युधिष्ठिर सुहृद सबको मानते थे, किसी के लिए वे दुश्मन नहीं थे, ना किसी को अपना दुश्मन मानते थे, इसीलिए उनको आजाद शत्रु भी कहते हैं। उस सुहृद का यहाँ अर्थ खासकर मामाओं के लिए है। उसमें भी जैसे शल्य जैसे सुहृद जो हैं स्निग्ध हैं उनके लिए, तो वे उनका वध हुआ है। मित्र, बहुत सारे मित्र मारे गए हैं। महाराज युधिष्ठिर के भी बहुत सारे मित्र मारे गए। इन मित्रों का भी मैं ही कारण हूं। पितरी यहां लिखे हैं, पितरी में कौन कौन थे उनका तो इसमें कुछ उल्लेख है नहीं, और हमारे दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा है। अज्ञात रूप से उनके पितरी भी बहुत मारे गए हैं, अथवा हो सकता है कि पितरी में जिनके अधिकार जिनके भावना मारी गई हो उस अर्थ में कहते हैं। जो भी हो, अब इस पर हम अपना टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि पितरी भी मारे गए, मित्र मारे गए, बालक मारे गए, सुहृद मारे गए, ब्राह्मण मारे गए, पितृगण मारे गए, और भ्रातृ, भ्रातृ का तो चित्रपट आ रहा है दिमाग में कि भाई बहुत सारे मारे गए, लेकिन पितृ का मेरे दिमाग में नहीं बन रहा है। आप लोगों के मन में आता हो चित्र या कुछ दिमाग में हो तो बतला दीजिएगा। हमको यही समझ में आ रहा था कि पितृ के अर्थ मतलब भावनात्मक है। जैसे धृतराष्ट्र के मन में यही भाव था कि हमारा ही पुत्र राजा बने, हम राजा बने, लेकिन नहीं हो सका, हम नहीं बने तो हमारा पुत्र बने, वो भी नहीं बन सका, उनका भाव का हनन हुआ, इसलिए भाव अर्थ में पितृ यहाँ है। क्योंकि कभी कभी भावात्मक अर्थ व्याकरण में लिया जाता है तत्संबंध से, तो यहाँ पितृ का अर्थ भाव से अगर किया जाए तो धृतराष्ट्र महाराज के ताऊ श्री के भाव का भी यहाँ भावना का भी बहुत भारी हनन हुआ, उसका कारण मैं ही बना। यदि मैं नहीं होता तो ये सब नहीं होता। भ्रातृ गुरु, भ्रातृ में सौ सौ भाई मारे गए, और उतना ही नहीं सौ के अतिरिक्त भी उनके महाराज युधिष्ठिर के ताऊ धृतराष्ट्र के और दूसरी पत्नियां थी जिससे और भी थे जो कि उनके पक्ष से निकलकर महाराज युधिष्ठिर के पक्ष में आ गए थे। घोषणा करते समय कि भाई घोषणा करते समय उस समय यह होता है कि अब युद्ध का समय आ गया है, अभी भी अगर इधर के सैनिक उधर जाना चाहते हैं, कोई योद्धा जाना चाहता है तो जा सकता है, अथवा उधर से कोई इधर आना चाहता है तो खुला दरवाजा है, लेकिन संकल्प लेने के बाद में कोई न उधर से इधर आ सकता है और न इधर से उधर जा सकता है। तो उस समय दुर्योधन का भाई था सौतेला, वह महाराज युधिष्ठिर के पक्ष में आया था और बड़ा महापराक्रम वीर था, वह भी मारा गया। तो उसको याद कर रहे हैं कि भ्रातृ बहुत सारे भाई मारे गए थे, इनके तरफ से तो कोई भाई नहीं मारे गए थे लेकिन इनके तरफ से भी भाई मारे गए हैं। कर्ण इन्हीं का भाई था और ये पहले इनको जानकारी हो गई, इसलिए शायद उस भाव को भी यहाँ लेते होंगे। सच्चाई जो हो, महाराज युधिष्ठिर जाने, भगवान जाने, हमको टाइम नहीं मिला कि हम इसको टीका पढ़ें, इसलिए समष्टि रूप से सारे भाइयों को याद करते हुए महाराज विलाप कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, संतप्त हो रहे हैं। और गुरु, गुरु से केवल धनुर्विद्या सिखाने वाले द्रोणाचार्य ही नहीं हैं, गुरु से यहाँ भीष्म पितामह हैं, मामा शल्य हैं, बड़े जनों को गुरु कहते हैं, बड़ा भाई है तो गुरु है, माता पिता ये सब गुरु में आते हैं। तो इन सबको याद कर रहे हैं कि ऐसे लोग भी मारे गए हमारे चलते। पूरा गीता के बात कह रहे हैं, अब उधर जाएंगे तो देर हो जाएगी।
सब मारे गए। नौमेश इन सारे चीजों को याद कह रहे हैं, याद करके कि इन सबका वध करने से या वध करवाने से, वध करने से या वध करवाने से नरक होता है। तब तो नरक होता है, तो नरक भोग कर व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। नरक में नारकी व्यक्ति को ले जाते हैं और यत्र दंडे न शुद्धयति, जहाँ पर दंड देकर उसको शुद्ध कर दिया जाता है। जैसे लोक में भी देखा जाता है कि कोई अपराधी अपराध करता है तो राज कर्मचारी उसे दंड देकर मुक्त कर देते हैं, तो भोग लिया हो गया, अगर यदि यहाँ नहीं होगा तो फिर वहाँ होगा, तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ नहीं देंगे तो वहाँ भोग लेंगे। तो कह रहे हैं कि ना नौमे श्या निर्यान मोक्ष, नरक में भी हमको भेज दिया जाए और उस नरक के यातना को भी भोग कर मैं चाहूं कि उस पाप को खत्म कर दूं तो वह संभव नहीं है, मैं इतना भारी पापी हूं। चलो एक दिन में नहीं होंगे, दो दिन में नहीं होंगे, दस दिन, बीस दिन, सौ, दो सौ वर्षों में हो जाएंगे ना। यहां साफ कह रहे हैं कि वर्षा युतायुतई ही अयुतायुतई बरसई ही में मोक्षो नस्यात। यहां तो प्रभुपाद जी साफ लिख दिए हैं कि लाखों वर्षों में भी हमारी ये पाप राशि समाप्त होने वाली नहीं है। इस प्रकार महाराज विलाप कर रहे हैं। इसके बाद भगवान खूब समझाए उनको, भगवान इतना समझाए कि गीता के उपदेष्टा भगवान समझाते समझाते थक गए। महाराज युधिष्ठिर को नहीं समझा पाए, शोक हुआ, मोह हुआ, अर्जुन जी को तो अपने गीता के ज्ञान से उनको समझा लिए और युद्ध करने के लिए इतना जोशीला बना दिए कि गुरु, दादा, आचार्य आदि सबका उन्होंने सामना किया और विजय को प्राप्त भी किया, उनको तो ठीक कर लिए, स्वरूप में ला दिए। लेकिन वही गीता के उपदेष्टा जिस गीता के ज्ञान को हमारे वैदिक वांग्मय शास्त्रों में सर्वोपरि माना जाता है, इसलिए भगवान ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, ज्ञान के मूलभूत कारण है। जहाँ कहीं भी ज्ञान है उन्हीं का ज्ञान है, जहाँ कहीं भी शास्त्रों में ज्ञान है उन्हीं का ज्ञान है, उस गीता को सर्वोपरि माना जाता है। आज हमारे भारतीय न्यायपालिका में भी वही है। उस गीता को ज्ञान देने वाला गीता उपदेष्टा ज्ञान देते देते बेचारा थक गया, जगन्नाथ जी थक गए, लेकिन समझा नहीं पाए। तब आगे कहेंगे कि चलो हमसे नहीं समझ रहे हो तो 456 वर्ष के आयु लिए हुए तुम्हारे अभी पितामह भीष्म पड़े हुए हैं, तो तुम उनसे समझ लो कि तुम अधर्म किए हो कि धर्म किए हो। मैं कह रहा हूं कि तुम धर्म किए हो, तुमसे कोई पाप हुआ ही नहीं, लेकिन हमारी बातों पर तुमको विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है, तो मैं कहता हूं कि तुम्हारे कुल वृद्ध, सबसे बड़े वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, उम्र वृद्ध, सब तरह से योग्य महापुरुष भीष्म पितामह सरसैया पर अभी पड़े हुए हैं, 456 वर्ष की आयु लिए हुए, उनसे सीख लो, उनसे समझ लो कि हम पाप किए हैं कि अधर्म किए हैं। तब वहां गए और प्रणाम किए और बहुत प्रसन्न हुए महाराज। भीष्म पितामह से जब मिले उन्होंने बड़ा सुंदर आगे उपदेश दिया है और स्तुति भी किए हैं, तो उन्होंने राजधर्म, स्त्री धर्म, सभी धर्मों का व्याख्यान करने लगे। तो भगवान कहे कि पूछ लो अपनी बात, नहीं तो फिर ये जाने वाले हैं, अब चित अपने धीरे धीरे अंतर्हित कर रहे हैं, अब जाएंगे, पूछो जिस समस्या से तुम जूझ रहे हो। तब उन्होंने कहा कि
जहाँ सुहृद श्री कृष्ण हैं, जहाँ गांडी उधारी अर्जुन है, जहाँ जुराज पद पर गदाधारी भीमसेन हैं, और जहाँ साक्षात धर्म पुत्र धर्म स्वरूप युधिष्ठिर, वहाँ भी पाप संभव ही नहीं है। अभी तुम सोच रहे हो कि हम पाप किए हैं, ये तो केवल इस माखन चोर मदन मोहन मुरली विहारी जसोदा नंदन का एक क्रीड़ा मात्र है। इसके महिमा को सब लोग नहीं जान सकते हैं, कब क्या कहाँ क्या करना चाहता है, कब क्या करना चाहता है, इसको सब लोग समझ ही नहीं पाएंगे। और इनके सानिध्य में रहे, इनके इच्छा से युद्ध किए, इनके इच्छा से राजा बने, इनके इच्छा से तुम सब कुछ किए हो, फिर भी अभी मान रहे हो कि हमने अधर्म किया है। अरे निष्कलंक युधिष्ठिर, तुम निर्द्वंद हो जाओ, तुमसे कोई पाप नहीं हुआ है, तुमने कोई अधर्म किया ही नहीं, तुम तो धर्म स्वरूप हो, तुम खेद को त्यागो बेटा और मुझे शांति से अब शरीर छोड़ने दो। और ये तुम्हारे मित्र के रूप में और मामा के लड़के के रूप में जो हैं, ये साक्षात भगवान हैं, इनके प्रभाव को सब लोग नहीं जानते हैं। नहयस्य विद्यते, इनका जो प्रभाव है वो कोई नहीं जान पाता है, कोई माने सर्वसाधारण नहीं जान पाते। इनको तो भगवान कपिल जानते हैं, इनको व्यास जानते हैं, मनु महाराज जानते हैं, मैं जानता कि क्या है। बहुत सुंदर उन्होंने समझाया, और इसके बाद में महाराज युधिष्ठिर उनके समझाने से समझ गए, उनके मन में विश्वास हो गया कि हम वास्तव में अधर्म नहीं किए हैं, और बहुत खुश हुए कि तुम चक्रवर्ती पद पर प्रतिष्ठित हो गए, अब हमारी हस्तिनापुर पूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो मैं चाहता था, जो अपने माता कुंती माता को वचन दिया था, या जो अपने पिताश्री को वचन दिया था, वह हमारी प्रतिज्ञा पूरी हुई। इसलिए आप लोग सानंद रहें, अपने चित्तवृत्ति को समाहित की और भगवान की स्तुति करते हुए शरीर छोड़ दिए। तब महाराज के शोक शांत हुए और दादाजी गुजर गए हम लोगों के बीच से, इसके लिए शोक भी हुआ। इसके बाद अंत्येष्टि आदि क्रिया की भगवान के सानिध्य में, फिर सभी लोग अपने अपने स्थान को पधारे। तो इस प्रकार बाल द्विज सुहृद मित्र पितृ भ्रातृ गुरु दुह नमे श्यान मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुत ही। तब महाराज युधिष्ठिर को शोक से मुक्ति मिली, जो मन में व्याप गया था कि हमारा सैकड़ों वर्षों में लाखों वर्षों में मोक्ष नहीं होने वाला है। तो दादाजी के बाद से उनकी शोक की निवृत्ति हो गई। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की। इस विषय में तो कोई प्रश्न करने का जगह नहीं है, लेकिन करना चाहे तो कर सकते हैं। इसका तो उल्लेख महाभारत में, हाँ अच्छा, नहीं पे यहाँ तो लिखा हुआ है ना, देख लीजिए, व्यसनम विक्ष तत्तेषाम अनन्य विषयात्मनम, साफ प्रमाण है ना, दिखा दें कि हो जाएगा, इतने से हो जाएगा। सातवां अध्याय को पढ़िए, सातवां या आठवां में है, भगवान देख लिए कि अब तो यहाँ समझाने और करने भर का वो नहीं है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रह्मास्त्र है, तब वो स्वयं भगवान ब्रह्मास्त्र को उपशमन कर लिए, स्वयं भगवान कर लिए, किसी को कहे नहीं, देखे कि अब कहने का और सुनने का समय नहीं है, इसलिए स्वयं अपने चक्र सुदर्शन से भगवान ब्रह्मास्त्र को नियमन कर लिए, साफ है। और परीक्षित के लिए प्रार्थना जब करते हुए आई तो उनके गर्भ प्रवेश की, वही सब नहीं है, एक क्रम से है, उसको पूरा पढ़ लीजिए अध्याय को, है यहाँ है, मैं दिखा देता हूँ। जब भगवान जा रहे थे तब की तभी की बात है, उसी समय तरह मुनि श्रेष्ठ पांडव पंच सायकान, पंच सायकान आया है ना, यहाँ साफ है सब श्लोक, देखिए 12वां 8वां अध्याय के 12वां नंबर का श्लोक पढ़ लीजिए और 13वां पढ़ लीजिए, दो श्लोक पूरा पढ़ लीजिए, नीचे तक कुंती महारानी जहाँ से बोले हैं उसके नीचे तक पूरा समझ में आ जाएगा आपको, है। और कोई देखिए, आप सुने हैं, हम पढ़े हैं और गुरु महाराज से सुने भी। महाभारत एक संक्षिप्त महाभारत है जिसमें केवल हिंदी हिंदी है, महाभारत विशाल भी है 6 खंडों में हम रखे हैं, उसको पढ़ना चालू करेंगे तो दूसरा ग्रंथ पढ़ने का मन नहीं करेगा, इतना रोचक ग्रंथ है। लेकिन अब उतना विशाल कौन पढ़ने जाए, संक्षिप्त वाला पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो पार्टनर है वो भगवान के पार्षद हैं, समझ रहे हैं। और अभिमन्यु जो है ये चंद्रमा का पुत्र है जिसका नाम है वर्षा, समझे, वर्षा 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 माने तेज, वर्चस्व कहते हैं तेज, प्रभाव प्रभाव ही तेज ही अभिमन्यु है। तो चंद्रमा से भगवान स्वयं कहे, आज्ञा दिए कि अपने चंद्रमा तुम अपने पुत्र वर्षा को युद्ध के लिए भेजो मर्तलोक में, अरे अभिमन्यु के रूप में रहेगा, कुछ दिन के बाद स्वयं लौट कर आ जाएगा, बहुत कम दिन में रहेगा, इससे विशेष काम है। तो भगवान की इच्छा से आया था और भगवान का भांजा भी था, तो शास्त्रों में प्रमाण ऐसा है। और आप भी सुने होंगे, मैं उसका अपलाप नहीं कर रहा हूँ, तो हम जैसा सुने हैं वो बतला रहे हैं, वो शत्रु नहीं थे, उनके सुहृद थे, उनके मित्र थे, और भगवान तो सबके सुहृद हैं, गीता में ही कहते हैं सुहृदम, सब जानते हैं, भगवान किसी के दुश्मन है ही नहीं, भले कोई मान ले, लेकिन वो सुहृदम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम का मतलब असुर देवता सबके सुहृद हैं, सुहृद माने हित विधान करने वाला, व्याख्या उधर नहीं करनी है, समझते रहिएगा। किंतु यहाँ जो वध की बात कह रहे हैं, इतना नितान सत्य है कि सबको भगवान नहीं मारे हैं, भीष्म को भी मारे, द्रोणाचार्य को भी मारे, कर्ण को भी मारे, जितने योद्धा हैं सबको भगवान मारे हैं, किसी में ताकत नहीं है दूसरे में, क्योंकि युद्ध तो केवल भगवान कर रहे थे, बाकी दूसरे सब मूर्ति थे। इसका निर्णय दिया है महाभारत में घटोत्कच, सॉरी बर्बरी दिया है, युद्ध जब हो गया सब संपन्न तो अर्जुन जी कहें वाह मेरा गांडीव, भीमसेन कह रहे हैं कि वाह मेरी गदा, गदा के बल पर युद्ध जीता गया, महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं वाह मेरी भाला, भाला चलाने में विश्व विजयी थे ना महाराज युधिष्ठिर, और नकुल सहदेव ढाल और तलवार की वाह वाह कर रहे थे, भगवान चुपचाप सुन रहे थे। सर्वज्ञ भगवान सबको जानने लगेंगे, कुछ नहीं बोल रहे थे, तो महाराज युधिष्ठिर कहे कि क्यों केशव बोलते नहीं हो, हम लोग इतना भारी जय प्राप्त कर लिए, आपको खुशी नहीं है क्या, नहीं आप लोग जय प्राप्त कर लिए हैं इससे तो मुझे खुशी है। क्या फिर हम लोगों की वीरता पर नहीं प्रसन्नता है क्या? क्या हम लोग जीत लिए इस पर प्रसन्नता नहीं है? युद्ध कौन जीता है यह मैं नहीं कह सकूंगा कि आप लोग जीते हैं कि कौन जीता है। तब शंका हो गई कौन जीता है, महाराज को शंका हो गई तब कौन जीता है आप बतलाओ, मैं भी नहीं बतला सकता हूं। तब कौन बतलाएगा? क्योंकि इसका निर्णय आपका ही वंशज है, वो निर्णय करेगा। वो कौन है? तो महापराक्रमी वीर बर्बरी जो घटोत्कच का पुत्र है वो है युद्ध देख रहा है। तो उससे पूछ लीजिए वो सारा युद्ध देखा है। जैसे वो देखते थे ना युद्ध संजय, उसी तरह वो बैठकर युद्ध देख रहा था पीपल के पेड़ के ऊपर से। तो वहां गए और सारा पूछे तो उत्तर दे दिया। महाराज युधिष्ठिर पूछे, बस बर्बरी ईमानदारी से बतलाना युद्ध किसने जीता है? अर्जुन के गांडीव ने, महाराज युधिष्ठिर के भाला ने, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गांडीव धारी द्रोण शिष्य अर्जुन ने, या नकुल सहदेव ने? कहा कि हे केशव, जो मैं युद्ध देखा हूं वो यही देखा हूं कि युद्ध में केवल श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शन ही सबका सब नाश कर रहा था, और कहीं कोई किसी में दम नहीं था। तब सबको शांति मिल गई। तो मारने की जहां बात है तो भगवान ही ये सब लीला किए हैं, समझ गए? और फिर भी वो किसी को मारे नहीं है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। भोजपुरी में कहते हैं हमारे तरफ, मरिहन राम लेकिन हिलवा लगा के। मारते हैं भगवान लेकिन कोई ना कोई युक्ति लगा कर, समझ में आई? इसीलिए भगवान निर्गुण निष्कल समग्र ब्रह्म। भगवान निष्कल है, निर्गुण है, निर्दोष है, सम है, इसलिए सबसे पर है। ठीक, और कोई? उसकी ब्रह्मास्त्र चलाने वाली शक्ति नहीं छीन लिया गया था, उसकी मणि निकाली गई थी, समझे? और मणि निकाल देने से यह नहीं कि उसकी पूरी शक्ति समाप्त हो गई थी, पूरी शक्ति उसकी समाप्त नहीं हुई थी, उसको जीते जी मरे हुए के समान छोड़ दिया गया था। उसमें शक्ति थी और ब्रह्मास्त्र चलाने के लायक था, आज भी है। कभी कभी किसी भाग्यशाली जीव को दर्शन दिए हैं, ब्रज में चर्चा है, जो एक पिसाए की झाड़ी है, उस झाड़ी में वे रहते हैं, तप करते हैं, और उस झाड़ी की विशेषता आज भी है कि कोई साधु ब्रह्मचारी जाकर वहाँ तपस्या करेगा तो तेज बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई गलती काम करेगा तो वो नष्ट भी हो जाएगा। कोई गलती काम कर ही नहीं सकता है डर के मारे वहाँ, एक चीज। दूसरी चीज, वहां के लकड़ी आज भी ब्रजवासी नहीं ले जाकर जलाते हैं। कोई साधु चाहे तो भोजन बनाकर खा सकता है, लेकिन वहां से गृहस्थ लोग लकड़ी नहीं ले जाकर जला सकते हैं, घर में अनिष्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो तेजहीन हो गए, तेज तो उनका है, केवल मणि निकाल ली गई थी। आई समझ में? और कुछ? श्रील प्रभुपाद की।